हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश कियाना को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। उसके वहां आने से उसके दादा दादी काफी खुश हो गए थे और उनकी बातों से आर्यांश समझ गया था कि वो उसे और कियाना को लेकर कुछ प्लान कर रहे थे। हालांकि आर्यांश आते ही अपने कमरे में चला गया था, इस वजह से वो उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया था। लेकिन कियाना जब अपने कमरे में जा रही थी तब उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थीं। आर्यांश के दादाजी पृथ्वी कपूर अपने बर्थडे के दिन आर्यांश और कियाना की सगाई करवाने वाले थे। कियाना को जब ये पता चला तो उसके पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। भले ही उसकी फैमिली सीधे कपूर विला में ना आई हो, लेकिन इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए उसका भी पूरा परिवार न्यूयॉर्क पहुंचा था। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। ये सब हर्षाली मॉम के बताए हुए तरीकों की वजह से ही हो रहा है। मैंने पहले उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लिया? अगर पहले ही उनकी बात सुनती तो आर्यांश की लाइफ में आज तक कोई लड़की नहीं आती और वो हमेशा से मेरा होता। खैर, जो भी हो, आर्यांश हमेशा से मेरा था, चाहे वो मुझे देरी से मिले या फिर पहले, कियाना ने हंसते हुए कहा। हालांकि इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए कियाना ने पहले ही काफी तैयारी कर ली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कल उसकी सगाई भी होने वाली है। कियाना हर एक चीज को फिर से चेक करने लगी। कल उसकी सगाई थी तो वो परफेक्ट लगना चाहती थी। वहीं आर्यांश इस वक्त अपने कमरे में था। उसने वहां आते ही सीधा सार्थक को कॉल किया। सार्थक भी आर्यांश के साथ ही न्यूयॉर्क आया था। दादाजी मेरी और कियाना की सगाई की तैयारी कर रहे हैं। भले ही उन्होंने कुछ कहा नहीं हो, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था, आर्यांश ने सार्थक के कॉल उठाते ही कहा। तब तो आपके लिए और भी अच्छा मौका होगा। वैसे मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं आपके दादाजी के ही होटल में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई जा रही है। मैंने मैनेजर से पता किया तो उन्होंने बताया कि आपके दादाजी अपने परिवार के साथ बिताए हुए कुछ खास लम्हों को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, सार्थक बोला। जैसे ही सार्थक ने वहाँ के अरेंजमेंट के बारे में बताया, आर्यांश के होठों पर ईविल स्माइल उभर आई थी। उसने उसी अंदाज में कहा, दादाजी मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं तो बदले में उन्हें सरप्राइज करना भी बनता है। तुम अच्छे से जानते हो आगे क्या करना है, लेकिन हाँ, पहले दादाजी की प्लान की गई वीडियो ही चलनी चाहिए। अब मैं इतना क्रूएल भी नहीं हो सकता कि उनके बर्थडे के दिन उन्हें कुछ पलों की खुशी भी ना दे सको। आर्यांश की बात सुनकर सार्थक ने आंखें घुमाई। उसने अच्छा खासा प्लान कर रखा था अपने दादा का बर्थडे बर्बाद करने का, और ऊपर से वो इस तरह तंज भरे लहजे में बात कर रहा था जैसे उसे उनकी कितनी परवाह हो। सार्थक से बात करने के बाद आर्यांश ने कॉल कट कर दिया था। अब वो सुकून से सो सकता था। लेकिन जैसे ही आर्यांश ने सोने के लिए आंखें बंद की, उसके सामने दीवा का चेहरा उभर आया था। ये कहना झूठ नहीं होगा कि वो दीवा को कुछ ज्यादा ही मिस करता था। आर्यांश ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ ईमेल चेक किए। उसने गोयनका एम्पायर्स को बर्बाद करने के लिए जो प्लान किया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से जा रहा था। जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ गोयनका एम्पायर्स ने प्रोजेक्ट साइन किया था उसमें उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बस दो दिन और फिर सब खत्म, मिस्टर गोयनका, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है। आप पहले ही अपनी लालच की वजह से जेल जा चुके हैं। मैंने आपको संभलने का एक मौका दिया था और आपको बाहर निकाला था, पर नहीं, आपने फिर से एक बार अपना सब कुछ दांव पर लगा ही दिया, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। आर्यांश का ये गुस्सा और नफरत उस पर कुछ ज्यादा ही हावी होने लगती थी जब भी उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी पास आने को होती थी। दो दिन बाद ही उसके पहले प्यार की 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी। आर्यांश ये कभी नहीं भुला सकता था कि उसके पहले प्यार की मौत की वजह दीवा और उसकी फैमिली थी। उसे खोने के दर्द ने आर्यांश की समझ को पूरी तरह खो दिया था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए आर्यांश ने कुछ दवाइयां ली और फिर सोने चला गया था। आज मिस्टर पृथ्वी कपूर के बर्थडे की न्यूयॉर्क में उन्हीं के होटल के अंदर ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। हर कोई अपनी अपनी तरफ से तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन आर्यांश पूरे दिन से बाहर नहीं निकला था। पार्टी की शुरुआत शाम को 7 बजे के करीब होने वाली थी। शाम के लगभग 5 बजे के करीब आर्यांश एक बुके के साथ अपने कमरे से बाहर निकला, वो भी इसलिए क्योंकि पूरी कपूर फैमिली एक साथ वेन्यू पर जा रही थी। आर्यांश पृथ्वी के पास आया और उन्हें वो बुके देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दादाजी, उम्मीद है कि आपको अपनी जिंदगी में वो सब मिले जो आप चाहते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे आज शाम मिलने वाला है, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अब तक तुमने खुद को अपने कमरे में क्यों बंद कर रखा था? कम से कम अपने दादा को बर्थडे विश करने के लिए तो नीचे आ ही सकते थे, पृथ्वी ने शिकायती लहजे में कहा और फिर आर्यांश के हाथ से बुके लेकर उसे पास ही किसी हाउस हेल्पर को पकड़ा दिया था। दादी माँ ने बताया था कि आपका बर्थ इवनिंग टाइम में हुआ था, कुछ ही टाइम रहा होगा तो सोचा आपको तभी विश करूं जब आप पैदा हुए थे। खैर, हमें वेन्यू पर चलना चाहिए, गेस्ट आने शुरू हो गए होंगे, आर्यांश ने टालते हुए कहा। आर्यांश तैयार होकर ही नीचे आया था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। आर्यांश कपूर का ऑरा ही काफी था लाखों लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए, फिर उसे बाकी तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन कियाना को तो आने दो, सुनिधि मुस्कुराकर बोली। कियाना का नाम सुनते ही मनीष और समीक्षा के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे, जो वहीं पर खड़े हुए थे। सुनिधि ने एक हाउस हेल्पर को भेजा और कियाना को वहां बुलाने को कहा। अगले 5 मिनट में कियाना उनके सामने थी। उसने बहुत ही हैवी और डिजाइनर व्हाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था, जो ऑफ शोल्डर था। अचानक समीक्षा की निगाहें कियाना के गले की तरफ गईं, जिसमें उसने सुनिधि का दिया हुआ डायमंड नेकलेस पहना था। कियाना के बाल पीछे एक बन में बंधे हुए थे और आगे की तरफ कुछ बाल कर्ल करके खुले छोड़े हुए थे। किसी भी लिहाज से उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक बर्थडे पार्टी को अटेंड करने वाली गेस्ट है। ऐसा लग रहा था जैसे इवेंट उसी का हो। इससे पहले कि समीक्षा कुछ कह पाती, सुनिधि ने कियाना का हाथ पकड़ा और आर्यांश से बोली, तुम दिखने में भले ही हैंडसम हो, लेकिन आज कियाना के सामने कुछ नहीं लग रहे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए? वो बातों ही बातों में आर्यांश को तंग कर रही थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि आर्यांश का पहना हुआ सूट एक एक्सक्लूसिव पीस था। आर्यांश ने कंधे उचकाए और कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप लोग चलिए मैं आता हूँ। आर्यांश ने उन लोगों को आगे भेज दिया था। उसने समीक्षा के चेहरे की तरफ देख लिया था, जो बहुत कुछ कहना चाहती थी। जैसे ही वो सब लोग वहां से निकले, समीक्षा जल्दी से आर्यांश के पास आई। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुमने कियाना के गले की तरफ ध्यान दिया? वो डायमंड नेकलेस मम्मी जी ने आज तक मुझे तक पहनने को नहीं दिया है, और आज अचानक कियाना को कैसे पकड़ा दिया? और वो इतना तैयार क्यों हुई है? क्या तुमने अपने दादाजी को बताया नहीं कि तुम दीवा से प्यार करते हो और तुम्हें कियाना से शादी नहीं करनी है? समीक्षा गुस्से में फूट पड़ी थी। उसे कियाना पसंद नहीं थी। ऊपर से कियाना को जिस तरह से तैयार किया गया था, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। आर्यांश ने समीक्षा को गले लगाया और प्यार से सहलाते हुए कहा, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए मॉम, और नॉर्मल रिएक्ट कीजिए। दादाजी आज मेरी और कियाना की सगाई करवाना चाहते हैं।
समीक्षा ने आर्यांश को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और वो जल्दी से उससे अलग होकर बोली, तुम्हें सब पता है, उसके बावजूद तुम नॉर्मल कैसे रिएक्ट कर सकते हो? ऊपर से मुझे भी चुप कहने को कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने सब पहले से ही तैयार कर लिया है और कोई सगाई नहीं होगी। बस आप पार्टी को अच्छे से अटेंड कीजिए। और रही बात नेकलेस की, तो मैं आपको उससे भी ब्यूटीफुल पीस डिजाइन करवा दूंगा। कहाँ आप एक पुराने जमाने के नेकलेस पीस के लिए गुस्सा हो रही हैं? आर्यांश ने समीक्षा को छेड़ते हुए कहा, जबकि वो अच्छे से जानता था कि बात नेकलेस की नहीं, इमोशंस की थी। समीक्षा ने उसे घूरा और बोली, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हारे डैड काफी हैं, और मेरे पास पहले से उससे ज्यादा अच्छी ज्वेलरी मौजूद है। बस मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारी दादी ने कभी मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना वो कियाना को दे रही हैं। कोई बात नहीं, दादा दादी के हिस्से का प्यार भी मैं और पापा कर लेंगे, अब आप अपना मूड अच्छा कीजिए। आर्यांश ने समीक्षा को प्यार से मनाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। जल्द ही वो लोग वेन्यू पर पहुंच गए थे। आर्यांश ने वहां पहुंचते ही आसपास देखा। पार्टी काफी ग्रैंड रखी गई थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि उनमें ज्यादातर लोग उनकी जान पहचान के ही थे, रिश्तेदार या फिर कुछ खास बिजनेसमैन। उसकी फैमिली भी आ चुकी थी, और फिर उसकी नज़र सौरभ की तरफ गई। उसके साथ प्रियंक नहीं था, तो आर्यांश को कुछ अजीब सा लगा। मॉम ने तो यही कहा था कि अंकल के साथ प्रियंक भी आने वाला है, फिर वो कहाँ रह गया? मुझे उस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई होप कि वो मेरे प्लान पर पानी ना फेरे, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आर्यांश ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा। पार्टी में आए गेस्ट पृथ्वी कपूर को बर्थडे विश कर रहे थे और उन्हें अलग अलग गिफ्ट दे रहे थे। आर्यांश को बस उस लम्हे का इंतजार था जब उसके दादाजी आगे आकर अनाउंसमेंट करने वाले थे। आर्यांश को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। केक कट करने से पहले मिस्टर पृथ्वी कपूर सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में माइक था। सबसे पहले तो मैं आप सभी गेस्ट को दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा, जो मेरे लिए समय निकालकर इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए, न सिर्फ इस देश से बल्कि मेरे देश से भी, पृथ्वी ने मुस्कुराकर कहा और फिर कियाना के दादाजी की तरफ देखा, जो कि उनके खास दोस्त थे। उसके बाद उन्होंने आगे कहा, आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत खास है। मेरे लिए मेरे जन्मदिन का अवसर बहुत खास होता है। इसकी कई वजहें हैं, क्योंकि आज के दिन मेरी माँ का भी बर्थडे था। मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरी मुलाकात आज के दिन हुई थी। यहाँ तक कि मेरी लाइफ पार्टनर सुनिधि कपूर से भी मैं आज ही के दिन मिला था। तो मैं इस दिन को अपने मरते दम तक सेलिब्रेट करना चाहूंगा। जब पृथ्वी ने अपने मुंह से मरने की बात की, तो कियाना के दादाजी और उनके बाकी परिवार के सदस्य उन्हें घूर कर देखने लगे थे, तो वो हल्का सा हंस दिए थे। अब मैं हमेशा थोड़ी ना जीने वाला हूँ, बस ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आज का दिन सेलिब्रेट किया जाए, और इस दिन इतने सारे खास इवेंट्स हुए हैं तो उन इवेंट्स की लिस्ट में एक और लम्हे को जोड़ दिया जाए। आज मैं आप सबके सामने अपने पोते आर्यांश और मेरे सबसे करीबी दोस्त शिव जैन की पोती कियाना की सगाई अनाउंस करता हूँ, जो कि अभी होने वाली है, आर्यांश के दादूजी ने मुस्कुराकर कहा। और इसी के साथ स्पॉटलाइट आर्यांश और कियाना के ऊपर चली गई थी। पृथ्वी कहीं ना कहीं आर्यांश के दिल की बात को जानते थे कि वो कियाना को पसंद भले ही ना करता हो और उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर दूसरा सच ये भी था कि इतने लोगों के सामने उनके बर्थडे के दिन वो उन्हें निराश नहीं करेगा। फिर पृथ्वी के बुलाने पर आर्यांश और कियाना आगे गए। कियाना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने आर्यांश के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सबसे बड़ी बात थी कि आर्यांश ने बिना किसी शिकायत के पृथ्वी की बात मान ली थी, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला था? तुम आज कियाना से सगाई करोगे ना आर्यांश? आर्यांश के आगे जाने पर पृथ्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए इमोशनल टोन में कहा, जिस पर आर्यांश ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। आर्यांश के हाँ कहते ही वहाँ सब लोग तालियां बजाने लगे थे। समीक्षा का चेहरा उतरा हुआ था और साथ ही श्रेष्ठ का भी। आर्यांश जानता तक नहीं था कि इस बीच दीवा पार्टी में प्रियंक के साथ पहुंच चुकी थी और वो सभी गेस्ट से दूर सौरभ और प्रियंक के साथ खड़ी थी। डॉक्टर गोयनका, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन आर्यांश जैसा पत्थर दिल शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। आज भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बनो, सौरभ ने आग में घी डालते हुए कहा। वहीं दीवा को यकीन नहीं हो रहा था कि उससे प्यार और शादी के दावे करने वाला आर्यांश इतनी आसानी से कियाना से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकता था। उसने मुंबई में उसे यही कहा था कि वो कियाना के साथ इसीलिए इस बर्थडे पार्टी में जाना चाहता है ताकि अपने दादाजी से कियाना से शादी करने के लिए इनकार कर सके। दीवा की आंखों में आंसू थे और वो ये सब देखकर लड़खड़ा गई थी, लेकिन प्रियंक ने उसे थाम लिया था। दीवा वहां से भाग कर जाना चाहती थी, लेकिन प्रियंक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, कई बार कुछ चीजें आंखों देखी भी सच नहीं होती हैं, थोड़ी देर इंतजार करो। लेकिन दीवा ने बोलना चाहा, पर प्रियंक ने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को कहा और वहीं पर रोक लिया था। दीवा की आंखों में आर्यांश के लिए आंसू देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। खुद उसने तक इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आर्यांश इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कह देगा, लेकिन हाँ, आर्यांश के चेहरे के भाव काफी कुछ कह रहे थे जो प्रियंक को समझते देर नहीं लगी। बस यही वजह थी कि उसने दीवा को रोका था।